Thank you. अभिशाप
प्रविष्ट हुए स्वभवन अपने महलों में
समस्त काम
इच्छाएं
अनुत्तम
सब तरह से पूर्ण
प्रासाद
महल
यत्र
जहां पत्निना पत्नियों को सहस्राणि हजार च इसके ऊपर षोडश सोलह अनुवाद और तात्पर्य ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से पूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। तात्पर्य भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए चार दीवारें तथा उद्यान से युक्त सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण दशम स्कंध में दिया गया है। सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी थी। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल समस्त शक्ति समस्त ऐश्वर्य समस्त सौंदर्य समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से युक्त हो। अतएव भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी न थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी न होती हों। भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं ही असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व काम अर्थात सभी वांछनीय इच्छाओं से पूर्ण कहा गया है। ओम ज्ञानतिरांतस्य ज्ञानांजन हरे। अथाविशत स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रासाद यत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से पूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थे। ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण जो अब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि वो जो कुछ करते हैं वो साधारण नहीं रहता, वो विशिष्ट और असाधारण रहता है। जैसे इस अध्याय का शीर्षक है भगवान का प्रवेश द्वारका। अब साधारणतः यदि कोई मनुष्य इस भौतिक संसार का हम देखते हैं कि हर रोज पता नहीं कितने मनुष्य द्वारका में प्रवेश कर रहे होंगे आज, और कितने मनुष्यों ने द्वारका में प्रवेश किया होगा, परंतु कोई उनके विषय में ग्रंथ नहीं लिखता या एक अध्याय पूरा उनके विषय में नहीं लिखता कि उन्होंने द्वारका में कैसे प्रवेश किया। परंतु जब भगवान और भगवान के पार्षद कुछ कार्य करते हैं तो वो बहुत ही विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रवेश किया तो जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रवेश किया तो कोई जानता नहीं था कि अमेरिका में कौन प्रवेश कर रहा। हालांकि जब वहां के लोग भी उस देश में प्रवेश करते हैं तो कोई बहुत असाधारण बात नहीं होती। और यदि कोई भारतीय और कोई भारतीय जो कि सन्यासी है, जो इतने उम्र के हैं 70 वर्ष के, यदि वो प्रवेश कर रहे हैं अमेरिका जैसे देश में, तो वो कोई पेपरों में खबर नहीं छपी थी। श्रील प्रभुपाद जी एक स्वामी भारत के, वो अब अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे और इस्कॉन की स्थापना करेंगे और इतने सारे मंदिर खोलेंगे और पुस्तक का वितरण होगा और इतने भक्त बनेंगे, ये सब कुछ कोई जानता नहीं था। परंतु भगवान जानते थे, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार भगवानंद प्रभु से वो चर्चा कर रहे थे और उन्होंने भगवानंद प्रभु को कहा कि वास्तविक रूप में मैं नहीं आना चाहता था इस भौतिक संसार में। और भगवानंद प्रभु उस समय थोड़ा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि मैं इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहता था, तो तुरंत उनके कान खड़े हो और वो ध्यान से सुनने लगे कि प्रभुपाद जी ये क्या कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सत्य बात है, भगवान जोर दे रहे हैं जाओ उस भौतिक संसार में जाओ, परंतु मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि जाकर केवल तुम ये पुस्तक लिखो और उनका वितरण करो और बाकी जो कुछ है मैं संभालू, भगवान ने कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि उनका आश्वासन था इसलिए मैं इस भौतिक संसार में आया। तो भगवान जानते थे और भगवान के जो अलग अलग पार्षद हैं वो जानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया था कि ये जो सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के, ये पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी के विषय में ये घोषणा कर दी थी। तो भगवान के जो कार्य हैं उनको जानने के लिए हमारे अंदर साधारण चेतना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के कार्य असाधारण है। इसलिए यदि हमें भगवान के कार्यों को समझना है तो हमारी चेतना भी असाधारण होनी चाहिए। असाधारण का अर्थ है विशिष्ट चेतना होनी चाहिए और विशिष्ट चेतना का अर्थ है भक्तिमय चेतना। तो यहां पर भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो पूरा द्वीप द्वारका का भगवान ने निर्माण किया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब जरासंध ने मथुरा पर प्रहार किया तो भगवान ने पूरे मथुरावासी उनके लिए ये द्वारका का निर्माण किया। और कितने समय में? एक रात्रि में। सारे मथुरावासी रात को सोए और सुबह जब वो उठे तो वो अपने आप को द्वारका में पाए। और ऐसा नहीं था कि भगवान उनको रात्रि में किसी बस में बिठाकर और रात भर मथुरा से द्वारका बस में बिठाकर ले गए या किसी प्लेन में बिठाकर, और क्योंकि उस समय कुछ था नहीं, द्वारका नगरी कुछ थी नहीं, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने सबको कहा कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर चलना, चटाई तकिया इत्यादि, वहां पर कुछ समय लगेगा पूरी द्वारका नगरी बनाने के लिए, तो पूरी तैयारी में वहां पर रहना और जब द्वारका नगरी में निर्माण कर दूंगा तो फिर कुछ सुविधा मिलेगी। पूर्ण प्रकार से जैसे यहां पर विवरण दिया गया है, सुसज्जित सभी महलों से ये द्वारका नगरी भगवान ने एक रात्रि में, हालांकि एक रात्रि का समय दिया गया है, वो समय भी बहुत ज्यादा है भगवान की। भगवान को यदि किसी चीज का निर्माण करना है तो भगवान केवल सोचने मात्र से, केवल स्मरण करने मात्र से वो चीज का निर्माण हो सकता है, पूरी सृष्टि का निर्माण हो सकता है। और हम देखते हैं कि यदि हमें किसी चीज का निर्माण करना होता है तो कितना समय लगता है। यदि मंदिर बनाना है, मंदिर में भगवान को रखना है तो कितना समय लगता है। और यदि मंदिर बना भी दिया तो मंदिर के अंदर यदि और कुछ निर्माण कार्य करना है तो यहां पर हम कुछ लोग जानते हैं कि कितना समय लगता है। कई बार दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं और फिर भी हमारा जो निर्माण होता है उसमें अलग अलग प्रकार के लीकेज, दोष, ये सब निकलते रहते हैं। परंतु भगवान जब निर्माण करते हैं तो यहां पर इतना सुंदर विश्लेषण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने ये जो 16,108 महल अपने रानियों के लिए बनाए, ये सारे महल अपने आप में सक्षम थे। ऐसा नहीं था कि महलों के अंदर भगवान को किचन बनाना पड़ा, बाथरूम बनाना पड़ा, ऐसा नहीं था। जैसे कई बार लोग ये बहुत ही उटपटांग प्रश्न पूछते हैं, व्यक्ति पूछ रहा था ये प्रश्न कि द्वारका में 16,108 महल भगवान ने बनाए तो टॉयलेट फैसिलिटी कैसा था वहां? वो सभी महलों में अटैच्ड बाथरूम टॉयलेट था कि कॉमन बाथरूम टॉयलेट था? तो क्योंकि हमारी चेतना केवल सुलभ शौचालय तक है तो इसलिए केवल यहां तक ही हमारी सोच जाती है। जैसे यहां पर इस श्लोक में कहा गया है सर्व कामम अनुत्तमम, कि भगवान ने ये जो महलों का निर्माण किया, ये सारे महल अपने आप में सक्षम थे सभी कामनाओं को पूरी करने। देखिए कि यदि कोई व्यक्ति इस महल में प्रवेश करता तो उसकी जो भी कामना होती वो कामना पूरी हो जाती। यदि उसे प्यास लगी है तो प्यास पूरी हो जाएगी, भूख लगी है तो भूख मिट जाएगी, यदि वो थका हुआ है तो थकान चली जाएगी। और जो कुछ इच्छा हो केवल प्रवेश करने मात्र से सारी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी देखिए भगवान ने हर एक महल में रख दी, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं आत्माराम है। और क्योंकि भगवान आत्माराम है तो भगवान के अंदर एक क्षमता है कि वो जो कुछ निर्माण करें उसके अंदर भी वो गुण डाल सकते हैं। और 16,108 पटरानियां भगवान की, और श्री प्रभुपाद जी अक्सर ये जो मुद्दा है इसको लिया करते थे। जब भी कोई कहता था कि फलाना व्यक्ति भगवान है और अपने आप को अगला अवतार मान रहा है, कह रहा है, तो प्रभुपाद जी इस मुद्दे को लिया करते थे कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किया उन्होंने, क्या है कोई तथाकथित भगवान इस संसार का जो 16 रानियों से भी विवाह करे? एक को रखना मुश्किल हो जाता है। यहां पर 16,108, और भगवान ऐसा नहीं था कि भगवान खींचे चले जा रहे थे ये 16,108 रानियों के बीच। भगवान ने अपना विस्तार किया 16108 कृष्ण या द्वारकाधीश के रूप में। और ये कथा है कि नारद मुनि जब उन्हें समाचार मिला कि द्वारकापुरी में भगवान ने इतने रानियों के साथ विवाह किया और इतने महल का निर्माण किया है, तो नारद मुनि उत्सुक हुए, जिज्ञासु हुए जानने के लिए कि देख के आते हैं कि ये नगरी कैसी दिखती है। तो नारद मुनि तुरंत गए, क्योंकि नारद मुनि ये ऐसे पार्षद हैं भगवान के कि भगवान जो कुछ नया करते हैं, कुछ नया अवतार हुआ या भगवान की लीलाओं में कुछ अलग मोड़ लिया है, तो तुरंत नारद मुनि सबसे पहले आकर देखना चाहते हैं। सबसे पहली खबर नारद मुनि को मिल जाती है, क्योंकि नारद मुनि उनके पास कोई घर परिवार तो है नहीं, और उनके पास ऐसा पासपोर्ट है जिसमें सब जगह का वीजा है, और वो तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं भगवान की लीला का आस्वादन करने के। तो नारद मुनि पहुंचे, और पहुंचते ही नारद मुनि महल में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि महल में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी एक रानी के साथ उस महल में बैठे, तुरंत नारद मुनि को उनका स्वागत करते हैं और उनके चरण कमल धोते हैं भगवान। और नारद मुनि वो अब उत्सुक हैं केवल भगवान का एक महल देखने के लिए नहीं, परंतु सब 16108 महल देखने के। तो नारद मुनि पहले तो सोच रहे थे कि भगवान देखो मैं पहले महल में घुसा और मिल गए भगवान, तो मेरा सौभाग्य देखो कि मैं जिस महल में घुसा वहीं पर भगवान बैठे हुए। ये नहीं जान रहे थे कि भगवान 16108 महल में बैठे हुए, और फिर नारद मुनि जब दूसरे महल में गए तो वहां पर भी बैठा देखे भगवान को। और नारद मुनि फिर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और 16108 महलों में जल्दी जल्दी घूम घूम कर देखने लगे कि मुझसे पहले कैसे पहुंच जा रहे हैं। परंतु फिर अंततः पता लगा कि भगवान कैसी थी शक्ति जिनके कारण भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर दिया। और देखिए भगवान का ये गुण है कि भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं इस तरीके से कि हर एक भक्त यही सोचता है कि भगवान मेरे साथ है, और भगवान उस भक्त की चेतना को भी इस प्रकार से बना देते हैं कि वो भक्त ये नहीं जान पाता कि ये जो भगवान मेरे साथ है ये सबके साथ विराजमान है। जैसे कि भगवान ने अपनी एक और लीला में अपने इस अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन किया भगवान की रास लीला में। तो रास लीला में यहां पर तो केवल ये 16108 ये गिनती बताई गई। भगवान ने जब अपनी रास लीला रचाई तो कितनी गोपियां थी, अनगिनत, कोई गिनती नहीं थी, अनगिनत लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में गोपियां थी। और भगवान कोई पूछ सकता है जब हम वृंदावन में रासस्थली पर जाते हैं तो वो सेवा कुंज रासस्थली तो छोटी सी दिखती है, परंतु वहां के बंदर अनगिनत दिखते हैं। वहां पर यदि आप बंदरों को देखो तो कोई गिनती नहीं उन बंदरों की। तो उस रासस्थली को यदि हम जाकर देखेंगे तो उसकी भी एक बाउंड्री है, और ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि अनगिनत गोपियां यहां पर भगवान के साथ रास रचाई थी। और भगवान ने अपनी रास लीला की एक रात्रि में, परंतु उस रात्रि को ब्रह्मा जी की रात्रि में परिणित कर दिया। तो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि थी उस एक रात को ब्रह्मा जी की एक रात, और आप लोग ने सुना होगा ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी होती है, और वो जो पूरी रात फली थी वो हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से वो जगह बहुत छोटी थी, परंतु भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति से उसे इतना विस्तारित कर दिया कि अनगिनत अनगिनत गोपियां उस रास थली में भगवान के साथ रास में थी। और भगवान जब रास लीला कर रहे थे तो भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ थे, और भगवान ने अपना विस्तार किया हर एक गोपी के साथ। हर एक गोपी यही देख रही थी कि भगवान आज केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर तो अलग अलग महल हैं, तो महल से दूसरा महल दिख नहीं रहा था, तो हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा परंतु भगवान होंगे शायद दूसरे महल में। यहां पर तो सब कुछ खुला था, सारी गोपियां एक साथ थी, फिर भी सारी गोपियों को यही लग रहा था कि भगवान श्याम सुंदर केवल मेरे साथ है। हालांकि भगवान हर एक गोपी के बीच में, हर एक गोपी के साथ थे, परंतु हर एक गोपी केवल यही देख रही थी कि भगवान मेरे साथ है। और आचार्य बताते हैं कि भगवान ने एक और अपना दिव्य अचिंत्य शक्ति वहां पर दिखाई कि भगवान साथ में एक ही रहे, परंतु भगवान इतनी जोर से नृत्य कर रहे थे, घूम रहे थे कि सबको लग रहा था कि भगवान मेरे साथ है। हर एक क्षण सबको लग रहा था मेरे साथ है। और एक भगवान की लीला में भगवान ने अपनी ये शक्ति दिखाई, कोई जान सकता है कौन सी लीला? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान जब अघासुर का वध करने के पश्चात सभी ग्वाल वालों के साथ बैठकर नाश्ता ले रहे थे, तो अनगिनत ग्वाल बाल थे, उनकी भी कोई गिनती नहीं थी, अनगिनत ग्वाल बाल थे, और भगवान सबके मध्य में बैठकर जो कुछ वो लोग लाए थे वो भोग भगवान स्वीकार कर रहे थे, और भगवान जो लाए थे वो उनको दे रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर वर्णन करते हैं कि सभी चारों तरफ बैठे थे, वो चित्र भी हमने देखा होगा, भगवान बीच में बैठे हैं और सभी ग्वाल बाल चारों तरफ बैठे हैं भगवान, और सभी ग्वाल बाल भगवान को देख रहे हैं और भगवान सबको देख रहे हैं। हालांकि कुछ ग्वाल बाल पीछे बैठते थे, परंतु उनको भी यही प्रतीत हो रहा था कि भगवान केवल हमारी तरफ देख रहे हैं, और सभी हरेक ग्वाल बाल को यही लग रहा था कि भगवान केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। तो सबको लग रहा था, पता नहीं बाकी लोगों को क्या लग रहा है, भगवान केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है कि भगवान एक है परंतु भगवान सबको प्रसन्न कर सकते हैं। एको बहुना यो विदधाति कामा, श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत कहा करते थे कि हालांकि वो एक है और हम बहु नाम है, और हमारी सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए ये भगवान है। तो यहां पर भगवान जो प्रवेश किए हैं, ये सारी जो पटरानियां, इनके विषय में दशम स्कंद में वर्णन आता है कि इनको बंदी बनाया था किसने? नरकासुर या भौमासुर। भौमासुर ने इन सभी 16,100 रानियों को बंदी बनाकर रखा था। ये भौमासुर हालांकि भगवान का ही पुत्र था, भूमि देवी से उत्पन्न भगवान का ही पुत्र, परंतु गलत संगति में जाकर इसने अपना जीवन जो है बहुत ही पतित बना लिया था। तो भौमासुर जो कि एक प्रांत में रहा करता था जिसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर, और भौमासुर ने अलग अलग राजाओं के ऊपर आक्रमण कर उनकी रानियों को लेकर बंदी बनाकर रख लेते। तो 16,100 राजाओं और उनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर इन सभी रानियों को एक साथ बंदी बनाकर अपने पास प्राग ज्योतिष रूप में रख रखा था। और उसने केवल इनको बंदी ही नहीं बनाया था, बल्कि इंद्रदेव तक पहुंचकर इंद्रदेव को बहुत ही कठिनाई में डाल दिया था इस भौमासुर ने। वरुण देव की एक छतरी, वो छतरी को चुरा कर ले गया ये भौमासुर। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अदिति के जो कुंडल, वो कुंडल चुरा कर ले गए ये भौमासुर। तो ये सब कुछ भौमासुर उत्पात कर रहा था। तो इंद्र वो भगवान के पास गए द्वारका में और उन्होंने भगवान को कहा कि ये जो भौमासुर है, कुछ कीजिए इसके विषय में। तो भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और अपने साथ सत्यभामा को भी ले लिए कि भगवान सत्यभामा को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं भौमासुर का वध कैसे करता हूं। और विशेष रूप से सत्यभामा को ये दिखाना चाहते थे कि मैं केवल तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं अब आगे चलकर इस 16,100 पटरानियों का पति बनने वाला हूं। तो सत्यभामा को भी अपने साथ गरुड़ के ऊपर ले गए भगवान। और जब भगवान पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर, तो भगवान ने देखा कि ये जो राज्य था, बहुत ही अलग तरीके से इसकी सुरक्षा की गई थी। भौमासुर ने अलग अलग पहरे लगाए हुए थे अपने इस राज्य के ऊपर, क्योंकि भौमासुर जानता था कि ये भगवान श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और मुझ पर प्रहार करेंगे और मेरा वध करने वाले। परंतु फिर भी क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति का था, तो इसने सारे अलग अलग प्रकार के पहरे लगा रखे थे अपने राज्य के चारों तरफ। और किस प्रकार के पहरे थे? अलग अलग जो पंच महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, इन सब के अलग अलग आवरण थे प्राग ज्योतिषपुर के ऊपर। जैसे कि हम जब रशिया जा रहे थे, तो रशिया में घुसने के लिए बहुत से पहरे उन्होंने लगा रखे। किसी भी देश में घुसने के लिए इतनी आसानी से आप अंदर घुस नहीं सकते। जैसे यहां पर भगवान घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो भौमासुर ने अपना कस्टम इंचार्ज सब जगह बिठा रखा था, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भौमासुर का। और उसका जो मेन कस्टम ऑफिसर कौन था? एक राक्षस जिसका नाम था मूरा। ये प्राग ज्योतिषपुर का भौंकता हुआ कुत्ता। रूपा जी कहते थे कि ये जो इमिग्रेशन के आदमी होते हैं देश में घुसने से पहले, ये लोग कहते हैं कहां है तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा कहां है, क्यों आ रहे हो, कितने दिन रहोगे, कब वापस जाओगे, ये सब भोगते हुए कुत्ते, श्री प्रभुपाद जी ने कहा। तो जब भगवान प्रवेश करने जा रहे थे, देखिए ये पूरी जो सृष्टि है वो भगवान की है, और ये भौमासुर ने सोच रखा है कि ये सब कुछ मेरा है और इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा इस प्रकार से कि कोई इसमें अंदर घुस ना पाए, यहां तक कि भगवान स्वयं। तो ये भौमासुर की जो योजना थी, ये 16,000 रानियों को बंदी बनाकर रखकर और ये अलग अलग आवरण, अग्नि, जल, वायु, इन सब का आवरण, यहां तक कि बिजली के तार भी लगा रखे थे। यहां तक भागवत में वर्णन है कि बिजली के तार लगा रखे थे और फिर इन सब के बीच में इस मूरा राक्षस को बिठा रखा था। तो आचार्य बहुत सुंदर तरीके से इस स्थिति की तुलना करते हैं एक बद्ध जीवात्मा की तुलना जो कि भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में आए हैं। तो जैसे ये 16,000 रानियां बंदी बनाई गई थी भौमासुर के द्वारा, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में बंद है, कारागृह में बंद है। और क्या क्या आवरण है, जैसे प्राग ज्योतिषपुर के चारों तरफ आवरण था पंच महाभूत का, तो उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है हम सभी, हमारे ऊपर ये बंधन है जल अग्नि वायु इन सब का। और ये जो मूरा राक्षस है इसकी तुलना की गई है मन से। ये जो मन है, दूषित मन हमारा, ये मन जो है ये और इस बंधन को दृढ़ कर रहा ताकि जीवात्मा बाहर न निकल सके। इसलिए कहा गया है मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष बंधाय विषया संगो मुक्ति निर्विषयं मनः, कि ये जो मन जिसकी तुलना इस मूरा राक्षस से की गई है यही एकमात्र कारण है हमारे बंधन का। तो ये मूरा राक्षस ये वहां पर पहरा लगाए हुए था ताकि कोई अंदर घुस ना पाए और ये रानियां बाहर निकल ना पाए। तो ये जो मन हमारा जो दूषित होता है ये देखता है कि कोई अच्छी चीज अंदर जा ना पाए, भगवान कृष्ण के विषय में कोई चर्चा या कथा ये अंदर न जाए और जो अंदर दूषित हमारा जो अनर्थ है वो बाहर न निकल पाए, या जीवात्मा इस देह से बाहर न निकल सके। तो ये कार्य है इस मूरा राक्षस या इस मन का। और भौमासुर की तुलना की गई है अहंकार से। तो ये जो अहंकार है जिसके वजह से मन या भौमासुर ने मूरा राक्षस को रखा हुआ है, तो अहंकार मन को प्रेरणा देता है गलत विषय में सोचने के, गलत इच्छाओं को अंदर पनपने के लिए, और फिर ये जो आत्मा है ये बाधित रहता है उसके अंदर। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब वो ठान लेते हैं कि मुझे इन्हें मुक्त करना है, और ये सारी जो रानियां ये प्रतीक्षा में थी कि कब भगवान आएंगे और हमें मुक्त करेंगे, तो इनकी जो प्रतीक्षा, इनकी जो प्रार्थना, जिनके वजह से भगवान द्वारका से निकले, हालांकि इंद्र आकर उन्होंने भगवान को कहा, परंतु भगवान परमात्मा स्वरूप इनकी प्रार्थना सुन रहे थे। और जब इनकी प्रार्थना इस स्तर तक पहुंच गई कि ये अब योग्य बन गई भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, तब भगवान द्वारका से निकले इनको मुक्त करने के लिए। उसी प्रकार से जब हम जो कि उन रानियों के समान बंद हैं हमारे इस देह में, और केवल इस देह में नहीं बल्कि जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि ये सब तत्वों से बनी हुई है, यदि हम देह से निकलकर बाहर भी जाना चाहें तो ये पूरी सृष्टि के ऊपर आवरण है, पृथ्वी का आवरण, उसके ऊपर जल का आवरण, उसके ऊपर वायु का, अग्नि का, और मन का, बुद्धि का, और अहंकार का, भागवत में वर्णन है, ये सब का आवरण है इस सृष्टि के ऊपर। और इन सब को भेद कर हमें भगवान के चरण कमलों पर आध्यात्मिक संसार में जाना है। तो ये जो कथा है दशम स्कंध में, भगवान का भौमासुर का वध करना, इन सब 16,000 रानियों को मुक्त करना, इसकी तुलना एक बद्ध जीवात्मा की मुक्ति से की गई है। और भगवान जब प्राग ज्योतिष पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले ये सारे जो आवरण थे, ये पहरे थे पंच महाभूत के, इन सब को अपने सुदर्शन चक्र से भेदा। और फिर ये मूरा राक्षस, ये सोया हुआ था, ये मूरा राक्षस जगा और तुरंत इसके पांच सर थे, पांच सर रूपी ये मूरा राक्षस आया भगवान के ऊपर आक्रमण करने। इसके पांच सर थे और इसके 10 पुत्र थे, और भगवान ने इसके पांचों सर को खत्म किया और इसके 10 पुत्रों को खत्म किया, और उसके पश्चात भौमासुर जाएगा। तो जब मन शुद्ध होना शुरू होता है तो जो अहंकार है ये जगता है कि मन शुद्ध क्यों हो रहा है। तो अहंकार जब उठता है तो भगवान फिर अहंकार के ऊपर प्रहार कर, इसलिए जो अहंकार है इसका आवरण सबसे गहरा बताया गया है। ये पूरे जो तत्वों का आवरण है सृष्टि के ऊपर, इनमें से सबसे गहरा आवरण है अहंकार। इसीलिए भक्ति में हम जप करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं और बाकी जितने भी अंग हैं भक्ति में, वो करने से हमारे अंदर जो ये सारे आवरण हैं अनर्थों के, ये धीरे धीरे साफ तो होते हैं, परंतु जो सबसे गहरा आवरण है वो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो है इस अहंकार का, मैं और मेरा। अहंकार इति अन्वय भगवान ने कहा है कि ये जो अहंकार है ये एक तत्व है जो हम इस भौतिक संसार में ही पाएंगे। भगवान ने कहा ये अहंकार आध्यात्मिक संसार में नहीं पाया जाता, हालांकि वहां का अहंकार है वो शुद्ध है। मैं हूं क्या? भगवान का सेवक, और यहां पर इसका विकृत स्वरूप है, मैं हूं स्वामी, हां मैं ही हूं भगवान। तो भगवान भौमासुर का वध किए, इन रानियों के साथ विवाह किया, और भगवान ने भौमासुर का वध करने के पश्चात इन रानियों को यह नहीं कहा कि मैं आया हूं तुमसे विवाह करने के, भगवान तो जा रहे थे, परंतु इन्होंने भगवान को याचना की और कहा कि हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, और क्योंकि अब इतने वर्षों से इस भौमासुर ने हमें बंदी बना रखा था तो कौन और हमें स्वीकार करेगा। तो एक भक्त जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उसकी स्थिति भी ऐसी रहती है, वो एक बार भक्ति में आ गया तो और कौन स्वीकार करेगा उसे भगवान कृष्ण के अलावा, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से अब वो गया गुजरा हो गया है और कोई आसार नहीं इस भौतिक संसार में उस व्यक्ति के। जैसे कि हमारा जो मंदिर है राधा गोपीनाथ, वहां पर यदि कोई व्यक्ति कोई मकान खरीदने जाए तो यदि देख ले कि हरे कृष्ण का मंदिर है तो कोई वहां पर पास में मकान नहीं लेना चाहता, क्योंकि कहते हैं कि अरे मंदिर के बगल में, वो भी हरे कृष्ण मंदिर के बगल में मकान लेकर हमारी शांति भंग करनी है। तो एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भक्तों को और भक्तों के संग को इस प्रकार से देखता है, और हमारे जो भक्त हैं जो इतने दूर रहते हैं, कई लोग मीरा रोड में विरार में इत्यादि रहते हैं, वो लोग अपनी पूरी जो पूंजी है, पूरी जो उनके जीवन भर की कमाई है, वो लगाना चाहते हैं मंदिर के बगल में रहने के लिए। जैसे कि हमारे शर्मा प्रभु आ गए मंदिर के बगल में, तो भक्त जो है वो प्रयास करते हैं कि कितना अधिक मैं भगवान के सानिध्य में रहूं, जैसे कि ये रानियां इतना प्रयास कर रही थी और अंततः भगवान का सानिध्य नहीं मिला, और इन्होंने यही बात कही कि अब और कोई स्वीकार नहीं करेगा हमें आपके अलावा। गोपियों ने भी यही कहा जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और शरद पूर्णिमा की रात्रि ये सारी गोपियां भाग कर आई भगवान के रासलीला में भाग लेने के लिए, तो भगवान परीक्षा करने लगे, भगवान कहने लगे कि क्यों आए हैं आप लोग, क्या कारण है? मैंने बांसुरी तो बजाई ठीक है, परंतु रात के, भगवान घड़ी देख रहे थे, रात के 12 बजे यहाँ पर और आप लोग सब गृहिणी हो, शादीशुदा हो और यहाँ पर क्यों आए? तो सारी गोपियां सोचने लगी कि भाई किसकी गलती है, हमारी गलती है कि इनकी गलती है? और उन्होंने भी यही कहा कि अब हम यहां पर आ गए आपको हमारी शरणागति देने के लिए, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करने वाला वहां पर, तो या तो हम हमारे प्राण त्याग दें यदि आप स्वीकार नहीं करते, और यदि आप स्वीकार करते हैं तो यही हमारा एकमात्र अब जीवन हो। तो एक जो भक्त है उसकी भी चेतना ऐसी ही होनी चाहिए कि जब तक हमें इस भौतिक संसार से आशा रहेगी तब तक भगवान आकर जैसे भौमासुर मोरा और अन्य जितने भी आवरण थे उनको भेद कर भगवान ने मुक्त किया, तब तक भगवान हमें मुक्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर ये जो 16108 रानियां भगवान जिनको भगवान ने सारे महल दिए, और ये सारे महल जिनके अंदर सर्व कामम अनुत्तमम, क्योंकि उनकी एकमात्र कामना थी भगवान से विवाह करने की, इसलिए भगवान ने ऐसा महल निर्माण किया जिसमें उनकी सभी बाकी कामनाएं पूरी हो सकती। इसलिए देखिए यदि कोई एक भौतिक दृष्टिकोण से भी देखे तो भगवान कृष्ण की शरण जाना ये सबसे फायदेमंद बात है कि उन्होंने एक कामना रखी परंतु अब उन्हें ऐसी सुविधा मिली है कि चाहे जो भी कामना उनकी हो वो पूरी हो सकती है केवल उस महल में रहने से। इसीलिए आध्यात्मिक संसार में देखिए भगवान ने कल्प वृक्ष रखे हैं। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष वो वृक्ष हैं जिसके नीचे यदि आप बैठो और जो भी इच्छा करो वो सब कुछ पूरी हो जाएगी। तो कल्प वृक्ष है और उसके साथ साथ कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय वो भी वही कि काम धेनु गाय ऐसी गाय है कि जो भी आपकी कामना हो वो धेनु ये गाय पूरी कर सकती है। और पूरा जो आध्यात्मिक संसार है वो चिंतामणि से बना हुआ है। ये जो पारस मणि पत्थर होता है ये क्या है? ये भी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। तो हालांकि आध्यात्मिक संसार जो कि इन सब से भरा हुआ है, कल्प वृक्ष, काम धेनु, चिंतामणि, परंतु भक्तों को कोई इच्छा नहीं। एक भौतिकतावादी व्यक्ति यदि सुनेगा कि अरे आध्यात्मिक संसार में कल्प वृक्ष है, काम धेनु गाय है और ये आध्यात्मिक संसार के जो निवासी हैं इनको कोई इच्छा ही नहीं रहती, तो भगवान को वो सब कुछ इधर ट्रांसफर करना चाहिए। भौतिक संसार में जहां पर इतनी सारी इच्छाएं हैं और पेड़ इतने हैं परंतु एक भी पेड़ को इच्छा पूरी नहीं करता, चाहे जो भी पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ जाऊं कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। तो देखिए श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि भगवान के जो भक्त हैं एकमात्र इच्छा चाहे वो कल्प वृक्ष के नीचे रहे चाहे काम धेनु के सानिध्य में रहे, उनकी एकमात्र इच्छा क्या है? भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। अन्य अभिलाषत शून्यम, कि और कोई अभिलाषा उनके अंदर नहीं है, केवल एकमात्र अभिलाषा है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी भी अपना शरीर त्याग रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? अब कुछ इच्छा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी इच्छा विहीन हो गए कि अब कोई इच्छा नहीं तो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा भी नहीं, इसका अर्थ यह नहीं हुआ। अब कोई इच्छा नहीं इस संसार में रहने की। श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी जो कि कुछ वर्ष पहले कैंसर के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग हेपेटाइटिस के कारण, श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी वो मायापुर में जब कुछ दिन बाकी रह गए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, नाउ ऑल द स्ट्रगल विथ माया इज ओवर। कि जब उन्हें पता लग गया कि केवल अब कुछ दिन बाकी हैं इस शरीर को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब जितना भी ये द्वंद्व चल रहा था माया से, जितना भी ये कर्षति माया के साथ हो रही थी कि ये सारी भौतिक इच्छाएं, ये अनर्थ और अलग अलग प्रकार की वासनाएं, ये सब कुछ अब खत्म होने जा रहे हैं क्योंकि शरीर खत्म हो रहा है और केवल एकमात्र इच्छा बाकी रह जाएगी, भगवान की सेवा, भगवत सेवा की इच्छा। तो ये हालांकि सारे महल जो हैं ये सब कुछ सुसज्जित हैं ऐश्वर्यों से, सर्व काम अनुत्तमम, परंतु भगवान के जो भक्त हैं उनकी कामना एक ही रहती है कि भगवान को प्रसन्न करें। इसीलिए वो योग्य रहते हैं आध्यात्मिक संसार में या ऐसे महलों में रहने के। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि हम इस भौतिक संसार में एक भी इच्छा रखें तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से हमें जन्म लेना होगा। यदि एक भी आसक्ति हो इस भौतिक संसार में किसी एक वस्तु से भी, तो उस आसक्ति को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर से हमें जन्म लेना होगा। तो देखिए कितनी आसक्तियां हैं हमारी, हालांकि हम भक्ति में हैं परंतु भक्ति में भी कितनी आसक्तियां हैं भगवान की भक्ति को, भगवान को छोड़कर। तो कितने समय लग जाएगा, कितने जन्म और लेने पड़ेंगे वो एक एक इच्छा को पूरी करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए। और जितनी इच्छा पूरी करेंगे उतनी वो इच्छा प्रबल होती जाती है। तो देखिए कि साधना भक्ति में ये वाक्य कहना जो प्रभुपाद जी ने कहा, अब कुछ इच्छा नहीं, ये बहुत ही एक बोल्ड वाक्य, इस प्रकार का वाक्य कहना। तो इसीलिए हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सारी जो गोपियां, ये जो रानियां भगवान की, जिनको भगवान ने मुक्त किया प्राग ज्योतिषपुर से, तो हम जो इस मायापुरी में हैं, भगवान की इस मायापुरी में, एक मैगजीन का नाम भी था मायापुरी, जो वास्तविक रूप में माया की पुरी थी, परंतु हमें इस मायापुरी से निकलकर मायापुर धाम जाना है, जो भगवान का नित्य धाम है। और वहां पर जाने के लिए यदि जो इनकी तीव्रता थी, इन रानियों की, जब तक वो तीव्रता नहीं आती, वो प्रार्थनाएं नहीं होती, तब तक भगवान आकर भौमासुर का वध नहीं करेंगे, मूरा का वध नहीं होगा और ये सारे जो आवरण हैं, पहरे हैं, इनसे हम मुक्त नहीं हो पाए। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि दो महीना जो मैं बाहर रहा, जैसे भगवान ने प्रवेश किया द्वारका में, तो इस धाम में भी, नासिक धाम में प्रवेश करने का अवसर मिल गया आप लोगों की प्रार्थनाओं के कारण। और दो महीना बहुत कुछ हुआ जिसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। और जन्माष्टमी का बहुत सुंदर त्यौहार आने वाला है, तो हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि जन्माष्टमी के इस सुंदर उपलक्ष्य पर हम सब अपने तरफ से भगवान को कुछ भेंट दें, और सबसे अच्छी भेंट भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वो क्या है? ये जो रानी ने दिया अपना सर्वस्व, मन काया और वाचा, इनसे यदि हम भगवान की सेवा और दृढ़ता से और शुद्धता से करें तो ये सबसे अच्छी भेंट हो। तो हालांकि हम जन्माष्टमी की तैयारी तो कर रहे हैं और हम मीटिंग में तैयारियां के विषय में चर्चा करते हैं कि पंडाल कहाँ लगाना है और शू स्टॉल कहाँ लगाएंगे ये वो, परंतु इससे ज्यादा तैयारी हमें करनी है हमारी चेतना की, क्योंकि भगवान आविर्भूत होंगे तभी जब चेतना शुद्ध हो। देवकी और वसुदेव वो जन्माष्टमी की तैयारी उस प्रकार से नहीं कर रहे थे कि भगवान आविर्भूत होंगे तो कहां पर पंडाल लगाना है, वो तैयारी कर रहे थे अपनी चेतना को शुद्ध कर। तो जन्माष्टमी से पहले केवल कुछ समय बाकी रह गया है, तो जन्माष्टमी से पहले बलराम जी इनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो बलराम जी उनके उनका महोत्सव उनकी जयंती हम मनाएंगे 28 तारीख को, और फिर हम भगवान कृष्ण की जो दशम स्कंद की लीला है उसका आस्वादन करेंगे पूरे एक हफ्ता। और यदि उससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो शायद भगवान अवतरित होंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की
जय।
हरे कृष्ण वांछाकल्पितरूपेश्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृन्द की
जय।
शिष्टाचारों की
जय।